ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம், சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம், சந்திரசேகர 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 ரக்ஷ மாம், சந்திரசேகர 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 ரக்ஷ மாம். ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம், ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம், ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷ மாம், ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷ மாம். கிருஷ்ணகேசவ பாஹி மாம், கிருஷ்ணகேசவ கிருஷ்ணகேசவ பாஹி மாம், கிருஷ்ணகேசவ 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 ரக்ஷ மாம், கிருஷ்ணகேசவ 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 ரக்ஷ மாம், சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம், சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம், சந்திரசேகர 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 ரக்ஷ மாம், சந்திரசேகர 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 ரக்ஷ மாம், சந்திரசேகர ரக்ஷ மாம், சந்திரசேகர ரக்ஷ மாம்.
ஓம் ஓம் ஓம். பிரேம்புரிய ஆசிரமாஜித் ததா கிருஷ்ணகுமார் தையா கீதா சிந்தன் மாலா அந்தர்கத் பிராயோஜித் கார்யக்ரம் அந்தர்கத் ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரியஜிக்கு ரச்சனா சிவானந்த லஹரி ஸ்தோத்திர கே ஆதார் பர் குஷ் சிவ பக்தி பாவ கா பிரசங்க விசார் சல் ரஹா ஹை. இஸ்கே லியே श्लोक नंबर है 76। भक्तिर्महेश पद पुष्कर्मा वसंती भक्तिर्महेश पद पुष्कर्मा वसंती कादम्बनीव कुरुते परितोषवर्षम् संपूरितो भवति यस्य मनस्ततः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत् बुद्धिस्थिरा भवतुमीश्वरपादपद्म शक्तबधुर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरण दर्शन कीर्तनादि सम्मोहितेव शिवमंत्र जपेन विन्ते सदुपचार विधि स्वनुबोधिताम् सविनयाम् सुहृदम् समुपाश्रिताम् मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोडवदूमिव नित्यं योगिमना सरोजदलसञ्चारसमक्षत्क्रमः सम्भूतेन कथं कठोरयमसुरं वक्षकटाक्षच्छति वक्षकवाटच्छति अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलम् आमि मनश्चिन्तय एतत् लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये नित्यं योगि मनः सरोजदलसं चारक्षमत्वक्रमः सम्भूतेन कथं कठोरयमरं सम्भूतेन कथं कठोरयमराड् वक्ष कवाटच्छति अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलम् आमि मनश्चिन्तयत् एतत् लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये यस्यत्येष जनिं मनोऽस्य कठिनम् तस्मिन्नटा नीतिमत् ద్రక్ష్యాయై గిరిసీమ్ని కోమల పదౌ న్యాసః పురాభ్యసితౌ నో చెద్దివ్య గృహాంతరేషు సుమనస్ తల్పేషు విద్యాదిషు ప్రాయ సత్సు శిలాతలేషు నటనం సంభో కిమర్థం తవ. భక్తి మహేశ పద పుష్కరమావసంతి. భక్తి శివభక్తి, పరమాత్మా కీ భక్తి, జో జీవాత్మా కీ హృదయ కా భావ విశేష హై ఉస్కో భక్తి కేతే. పరమాత్మా ప్రతి ఆస్థా, పరమాత్మా ప్రతి కో విశ్వాస్, పరమాత్మా ప్రతి శ్రద్ధా, ఇన్ సబ్సే యుక్త జో హృదయ కా భావ హై ఉసీ కో భక్తి కేతే. కైసీ భక్తి? మహేశ పద పుష్కరం ఆవసంతి భక్తి. మహేశ మానే పరమాత్మ, భగవాన్ శివ, మహాన్ ఈశ మహేశ, సర్వశ్రేష్ట సర్వశక్తిమాన్, కర్తుం అన్యతుం అకర్తుం అన్యథా కర్తుం సమర్థ పరమాత్మ, జో ఈశ్ భీ హై ఔర్ మహాన్ భీ హై, ఇసిలియే ఉస్కా నామ్ మహేశ హువా. మహేశ పద యానీ పరమాత్మా కే చరణ. మన లో పరమాత్మా కా జో చరణ హై వహీ పుష్కరం, పుష్కర హై. పుష్కరం ఆవసంతం, पुष्कर शब्द का अर्थ दो होता है. कोश में पुष्कर शब्द का अर्थ एक सरोवर भी होता है और पुष्कर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है. आकाश को भी पुष्कर कहते हैं और सरोवर को भी पुष्कर कहते हैं. यहां भगवान शिव के चरण को ही आकाश की उपमा दी है. भगवान शिव का जो चरण है वो आकाश रूप है, आकाश. इसलिए भक्ति शिव चरण रूपी आकाश में रहने वाली महेश भक्ति. आ वसंती, आसमंतात वसंती निवसंती इति पुष्कर पुष्करम आवसंति, आकाश में रहने वाली. कौन सी आकाश? भूताकाश नहीं, परमात्मा के चरण रूपी आकाश में. कादंबनी व कादंबनी अर्थात बादल. बादल हमेशा आकाश में ही विचरण करते हैं, है ना? बादल आकाश में ही विचरण करेंगे तो भक्ति रूपी बादल कहां विचरण करेंगे? परमात्मा के चरण रूपी आकाश में विचरण करते हैं. परितोष वर्षां कुरुते, बादल का काम क्या है? आकाश में विचरण करके बादल का काम क्या है? आजकल जो कर रहे हैं, वर्षम कुरुते, बादल वृष्टि करते हैं, बारिश करते हैं, इसको उपमा अलंकार बोलते हैं। यहां अलंकार प्रयोग है, उपमा अलंकार, सादृश्य उपमा अलंकार। जैसे बादल आकाश में विचरण करते हुए बारिश वृष्टि करते हैं, पानी का पानी को बरसाते हैं, इसी तरह भगवान शिव के चरण रूपी आकाश में विचरण करने वाली शिव भक्ति इव कादंबनी इव, वही है बादल मानो। तो वह किसकी वर्षा करते हैं? परितोषः, सर्वत्र संतोष की वृष्टि करते हैं, करती है। पहले भी इस प्रकार की व्याख्या हो चुकी है। शिव भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट नहीं हो सकता। परमात्मा का भक्त किसी भी अवस्था में असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। हर अवस्था में वह संतुष्टि का ही अनुभव करता है और संतुष्टि को ही व्यक्त करता है, क्योंकि संतोष परितोष, परि माने चारों तरफ से, परिता तोष परितोष, चारों तरफ से हर अवस्था में हर परिस्थिति में वो संतुष्ट ही रहेगा। संसार और सांसारिक विषयों से संतुष्ट रहना ही शिव भक्त का लक्षण है। दूसरी बात, साधना में असंतोष रहना, सांसारिक पदार्थों से संतुष्ट रहना, ये भक्त का लक्षण है। भक्त साधना के माध्यम से जिस भूमिका में पहुंचता है, क्रमशः आरुरुक्षु की भक्त भूमिका में रहता है। और क्योंकि वक्ता आरुरुक्षु की भूमिका का है, इसलिए साधना काल में वो जिस भूमिका में पहुंचता है वहां वो संतुष्ट नहीं रहता। भक्तों की भूमिका में वो संतुष्ट रह जाए तो आगे उसकी साधना बढ़ेगी नहीं। भोग भूमिका में वह संतुष्ट है, योग भूमिका में वह असंतुष्ट ही रहता है। इसलिए ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, इस चौथे प्रकार के जो ज्ञानी भक्त हैं उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, उस भूमिका में जब तक नहीं पहुंचेगा भक्त संतुष्ट नहीं होता। संतुष्टि का लक्षण होता है इति अलम। संतुष्टि का लक्षण क्या है? इति अलम, जो है जहां है वो ठीक है। असंतुष्टि का लक्षण क्या है? इतनी से पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। अनलम, अलम बुद्धि तो हो ही नहीं सकता है असंतुष्टि। तो अलम बुद्धि जहां हो तो उसको संतोष कहते हैं। तो साधना में अनलम और भोग भूमिका में अलम बुद्धि, यही भक्तों का लक्षण है। आप लोगों ने सुना है, पत्नी मरी सुना तो भलो थयो भागी जंजाल है ना नरसिंह मेहता, यही तो आलम बुद्धि है, यही तो आलम बुद्धि है, यही तो संतोष बुद्धि है। ठीक हुआ, महात्मा लोग जो बहुत सुनाते हैं, ईश्वर जो करता है ठीक करता है, तो भक्त की दृष्टि तो यही नहीं है, ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है, गलत कर ही नहीं सकता है। हमारी अपेक्षा से वह गलत हो जाता है, लेकिन ईश्वर की तरफ से वो गलत नहीं होता। गलती और सही का मूल्यांकन तो हम करते हैं, हमारे अपने दृष्टिकोण से, अपने मापदंड से हम जब समीक्षा करते हैं, तब तो जो हमारे अनुकूल हो गया वो सही हो गया, जो हमारे प्रतिकूल हो गया तो गलत हो गया। अब हम ये विचार नहीं कर सकते हैं आज का जो प्रतिकूल है, संभव है कि कल वह अनुकूल हो जावे, उसके लिए आज यह प्रतिकूल किया है परमात्मा ने। तब ये सोचेंगे तो आज का प्रतिकूल भी हमारे लिए अनुकूल ही है, लेकिन हम इतने हतार कर लेते हैं, इतनी जल्दीबाजी कर लेते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी प्रसंग हो, प्रतिकूल तो होनी ही नहीं चाहिए। अब ये संभव है ही नहीं, तो आप लोगों ने बहुत सुना है परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, कहानी बहुत बार सुना है आप लोगों ने। एक राजा था और एक मंत्री था। राजा की मान्यता थी कि हम जो करें वो सही हो, और जब तक हम बुद्धि लगाकर न करें तब वो गलत हो जाता है। तो इसलिए अपने को ही करना चाहिए, तभी सही होगा, दूसरा का किया हुआ सही नहीं हो सकता है। तो मंत्री का कहना था कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है, इसलिए ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर जो करता है सही करता है, गलत नहीं करता ईश्वर। तो एक बार राजा अपने तलवार को साफ कर रहा था तो अपनी उंगली कट गई, तो जोर से चिल्लाया राजा, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज? बोले देखो, अपनी ही तलवार से अपनी उंगली कट गई। ईश्वर जो करता है सही करता है महाराज। तो राजा को तो गुस्सा आ गया, ते मूर्ख कहीं का, हमारी उंगली कट गई और तू कहता है ईश्वर जो करता है सही करता है, ऐसा भी ईश्वर कैसा, किस काम का भाई जो हमारी उंगली कट जाए। अक्सर हम लोग यही कहते हैं ना, अक्सर हम यही कहते हैं ना, हमारे दुश्मनों को घाटा हो जाए तब तो समझ में आता है कि ईश्वर जो करता है सही करता है।